कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम एषाम पक्षे जनार्दनः, जय सदा पांडु के पुत्र जैसे को होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां भगवान विद्यमान है वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी वह जाएगा वहां विजय निश्चय है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्जिनमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे कृष्णा। जो दर्शनार्थी हैं कृपा करके शांति बनाए रखें, हो सके यदि बैठ सकें, समय हो तो बैठिए, हरि कथा सुने। तो हम लोग सुन चुके हैं कि दुर्योधन बड़े चिंतित थे कि होगा क्या, क्योंकि पांडवों के पक्ष में एक मत था, एक लक्ष्य था, जहां कौरवों के पक्ष में दो था। और दोनों जो बागी लोग थे, बागी कहते हैं ना, जो दोनों बागी थे ये बड़े महान थे, ऑर्डिनरी नहीं थे, जो युद्ध के पक्ष में नहीं थे, वे थे पितामह भीष्म और गुरु द्रोण। दुर्योधन बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, तो वे दोनों को मनाने के लिए गए। पहले वे आचार्य को मनाने गए, आचार्य कुछ नहीं बोले तो पितामह के तरफ मुड़े। पितामह ने जब यह लक्षण देखा तो सोचा कि यह लक्षण ठीक नहीं है दुर्योधन के लिए। जो व्यक्ति पहले ही हताश हो जाता है उसका हारना जरूरी है, जो पहले ही भयभीत हो जाता है वह कभी विजय को प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई भी फील्ड हो, जो आगे बढ़ रहा है उसके मस्तिष्क में भय नाम का कोई वस्तु होना ही नहीं चाहिए। जब भय रहता है, जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे रात में जा रहा है उसे भय है, और यदि पत्ता भी खड़खड़ाता है कुछ आवाज आता डर जाता है, क्योंकि उसके दिल में भय है। जब भय रहेगा तो विजय कभी नहीं हो सकता है। कोई फील्ड हो, लड़के पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, जो कुछ भी, निर्भय रहना पड़ेगा, जो कि पांडव लोग थे, जहां के दुर्योधन में इस बात की कमी थी। तो दुर्योधन को मात्र उत्साहित करने के लिए, हर्षित करने के लिए, खुश करने के लिए पितामह शंख बजाए। भीष्म पितामह सेना के सेनापति थे। एक सेकेंड भगवान ने अपना योग माया ऐसे प्रस्तुत किया, क्योंकि भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश देना चाहते थे। पितामह भीष्म, क्षत्रियों का भाषा अलग होता है, क्षत्रिय लोग काम ज्यादा करते हैं, बोलते कम हैं। जो काम नहीं करने वाला होता है खूब बोलता है। तो पितामह भीष्म भाषा में बतलाए दुर्योधन को, कहा गया तस्य संजयन हर्षः कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विरोदस्य शंख दम्यो प्रतापवान। प्रतापवान बलशाली शंख को पितामह भीष्म बजाए, किस लिए? तस्य हर्षयम, दुर्योधन को हर्षित करने के लिए, खुश करने के लिए। अब आगे के श्लोक बताया गया है कि उसका प्रभाव कैसा रहा जो शंख बजाया गया था। तो कहते तथा शंखाश्च भैर्यश्च परमानक गोमुखा सशैवाभ्यंतश्च शब्द तुमलो अभवत। सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट था। जब ही पितामह शंख फूके कि वहां पर पव आनक यानी ढोल मृदंग श्रृंग ये सब बजने लगे अचानक, और बहुत आवाज हुआ, उस आवाज का आ गया तुमलो अभवत। तुमलो मतलब कोलाहलपूर्ण, बहुत आवाज हुआ। तो पितामह भीष्म जो शंख बजाए थे उससे आवाज हुआ। देखिए पितामह भीष्म सेना के सेनापति हैं। बैठेंगे कि जाएंगे? मैं बात करता हूं, प्रवचन के बाद फोन करता हूं। अरे बोल आप बता दीजिए पूरा। तो क्या बात हो रही थी? मैं कहा कि पितामह भीष्म सेना के सेनापति थे। अब जब सेना के सेनापति जब शंख बजा दिए, इसका मतलब क्या हुआ? बिजिल बज गई, मतलब लड़ाई शुरू। और दूसरे तरफ से ततः तत्पश्चात, देखिए महाभारत में जो भी आप देखोगे, ये युद्ध हुआ था कौरवों के चलते, न कि पांडवों के चलते। युद्ध की जो इच्छा थी, धृतराष्ट्र स्वयं बोले धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संबेताजुसव, युद्ध की इच्छा से। युद्ध की इच्छा किसमें थी? पांडवों में थी कि कौरवों में थी? आप जब महाभारत पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, तो पता चलेगा कि युद्ध की जो इच्छा थी वो कौरवों में थी, न कि पांडवों में। भगवान सन्निध उत्पन्न करके गए थे, पांच भाइयों के लिए पांच गांव देखता ही था ना, कहे कि नहीं युद्ध के बिना सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। युद्ध का आह्वान भी दुर्योधन ने किया। यहां पर देख सकते हैं कि पितामह भीष्म शंख पहले बजाए, पांडव सेना नहीं बजाई। जब पितामह बजा लिए, अब इसी बज गया तो ततः तत्पश्चात जब उद्घोषणा हो गई, तब श्वेत हैर युक्त महती अस्यंदन स्थित माधवा पानवा शैव दिव्य शंख प्रदम दतु। श्वेत हैर युक्त, दूसरे तरफ से श्वेत घोड़ों पर, श्वेत घोड़ों से वह रथ जिसमें श्वेत घोड़े जोते गए थे, श्वेत हैर युक्त, श्वेत घोड़ों से युक्त रथ था। ये जो श्वेत घोड़े थे गंधर्वपति, गंधर्वों के राजा महाराज चित्ररथ, गंधर्वों के राजा थे चित्ररथ। वो अर्जुन को 100 घोड़ा दिए थे। ये घोड़े कोई ऑर्डिनरी नहीं थे। जब ये लोग पांडवगढ़ वन में थे, उस समय दुर्योधन कर्ण इत्यादि जाकर के पता लगाना चाहते थे। हरे कृष्णा माताजी लोग बात मत करो, गोविंद गिरधारी प्रभु की माताजी बात मत करो, कथा सुनो, बात मत करो। आप लोग डिवोटी हो, आप लोग करोगे फिर और क्या करेंगे? क्या बोल रहा समय वो भी सामने बैठ करके। हाँ, ये 100 घोड़े थे, ऑर्डिनरी घोड़े नहीं थे। यहां पर अर्जुन के रथ में जो कुछ भी हुआ है सबके लिए सब दिव्यऊ, दिव्य नहीं है, दिव्यऊ बहुवचन, सब कुछ दिव्य थे। जब पांडवगण वनवास में थे तो दुर्योधन आदि गए थे मजाक उड़ाने के लिए, देखने लगे भीम खा रहे हैं कि नहीं, दुबले पतले तो नहीं हो गए ना। उस समय यक्षों ने दुर्योधन आदि को परास्त कर दिया था और महाराज युधिष्ठिर के आदेश पर अर्जुन जाकर के गंधर्वों को और यक्षों को परास्त कर दिए। तब चित्ररथ गंधर्व बड़े खुश थे और अर्जुन को वे कुछ देना चाहते थे। उनके पास एक घोड़े थे तो वे 100 घोड़े थे। 100 घोड़ों का खूबी था, उस 100 घोड़े में से 4 घोड़े जो थे अर्जुन के रथ में लगाए गए थे। इनका खूबी यह था कि ये घोड़े कहीं जा सकते, स्वर्ग में, नरक में, पाताल में, 10 दिशाओं में जा सकते थे। ये घोड़े कभी थकते नहीं थे, यदि मार भी दिए जाए तो 4 के 4 हमेशा रथ में रहेंगे। ये दिव्य घोड़े थे, कोई ऑर्डिनरी घोड़े नहीं थे। उसके बाद महती अश्वंदनई, जो रथ था इसे कहा गया महती, बहुत महान रथ था। इसका लंबाई चौड़ाई इतना था कि जितना धनुष बाण 9 बैलगाड़ी में लादा जा सके उतना बड़ा यह रथ था। और यह रथ अग्निदेव के द्वारा प्रदत्त था। जब खांडव प्रस्थ में अग्निदेव हमेशा आहुति से घी खाते खाते उनके लीवर में थोड़ा तकलीफ हो गया था, चिकना हो गया था लीवर, तो थोड़ा कभी कभी दूसरा प्रकार से खाना चाहिए, तो उसको पिघलाने के लिए अग्निदेव खांडव प्रस्थ को खाना चाहते थे, खांडव वन को। लेकिन वह खांडव वन वासुकी का प्रवेश प्रदेश था और वासुकी का दोस्ती जो है वह इंद्र आदि देवताओं से था। तो जब भी अग्निदेव प्रयास करते थे खांडव वन को जलाने के लिए, इंद्र बहुत जोर से वर्षा करते थे तो कभी जला नहीं पाते थे। फिर वे एक समय भगवान कृष्ण और अर्जुन आखेट के लिए गए थे। जय श्री स्मृताई गौर सुंदर राधा माधव सीता जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की जय। तो अर्जुन के शरण में अग्निदेव आए और अर्जुन अपने ही पिता इंद्र को परास्त कर करके और अग्निदेव के क्षुधा को शांत किए। तो अग्निदेव बड़े खुश हो गए और वे खुश होकर के ये बहुत बड़ा रथ दिए, जो सोने से महा हुआ रथ था। इतना विशाल काय था कि 9 बैलगाड़ी में जितने अस्त्र शस्त्र लग सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र अर्जुन के रथ में लग सकते थे। महाभारत युद्ध में किसी के पास ऐसा रथ न था। महती कहा गया है, महान। इसका जो ध्वज था वह 1 योजन तक लहराने वाला था। 1 योजन मतलब 4 कोस, 4 कोस का ध्वज था जिस पर हनुमान जी कपि ध्वजा हनुमान जी विराजमान थे। और यह जो ध्वज था इसका गुण था कि रथ जब जाता था और कोई वृक्ष इत्यादि आ जाए तो वो ध्वज जो था काट सकता था, महती था, आसान नहीं था। महती अस्तंदने स्थितऊ, स्थितऊ का अर्थ है कि भगवान सत्य संकल्प हैं अपने भक्तों का रक्षा करने के लिए। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि भाई मैं लड़ाई